नमस्कार भारत, शुक्रवार 16 अक्टूबर, मैं हूं निखिल रंजन। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की विदाई टली, ओबामा के राष्ट्रपति रहने तक बनी रहेगी छावनी।
We will maintain 5,500 troops at a small number of bases, including at Bagra.
बिहार में आज दूसरे दौर का मतदान, कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज।
बिहार के दो बड़े दलित लीडर और एक क्षेत्र से मगध क्षेत्र के दो बड़े दलित लीडर के बीच का एक मुकाबला है इस लिहाज से, और दो अलग अलग खेमों के चेहरे हैं, दोनों बड़े वेटरन पॉलिटिशियन हैं।
घर से दूर भी मिल रहा है घर में बना खाना, कहां और कैसे, सुनिएगा खास रिपोर्ट में। अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका वर्ष 2016 के बाद भी अफगानिस्तान में अपनी फौज रखेगा। व्हाइट हाउस में उन्होंने कहा कि 5,500 अमरीकी सैनिक अफगानिस्तान में मौजूद रहेंगे। पुरानी योजना के मुताबिक सिर्फ एक छोटी टुकड़ी को दूतावास में रहना था और बाकी सभी सैनिकों को अगले साल के आखिर तक वापस चले जाना था, लेकिन अमरीकी सेना का कहना है कि अफगान सेना को तालिबान के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए और मदद की जरूरत है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में हुई बैठक में यूरोपीय संघ के नेता तुर्की के साथ शुरुआती समझौते पर सहमत हो गए हैं, जिससे यूरोप पहुंचने वाले प्रवासियों की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है। बैठक के बाद यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने कहा,
Our intensified meetings with Turkish leaders here in Brussels.
बीते कुछ दिनों में ब्रसल्स, अंकारा और न्यूयॉर्क में तुर्की के नेताओं के साथ हमारी गहन बैठकों का एक ही लक्ष्य था, वो ये कि तुर्की के रास्ते आने वाले प्रवासियों को नियंत्रित किया जाए। ये समझौता इस दिशा में एक अहम कदम है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण अफ्रीका में एक पेरोल बोर्ड ने कहा है कि ओलंपिक और पैरालंपिक धावक ऑस्कर पिस्टोरियस को अगले मंगलवार जेल से रिहा कर दिया जाएगा और इसके बाद उन्हें घर में नज़रबंद रखा जाएगा। ऑस्कर पिस्टोरियस को अपनी गर्लफ्रेंड की गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया था, जिसके लिए अदालत ने वर्ष 2014 में उन्हें 5 साल जेल की सज़ा सुनाई थी। पेरोल बोर्ड का कहना है कि पिस्टोरियस जेल में 12 महीने बिता चुके हैं और बची हुई सज़ा के तौर पर उन्हें घर में नज़रबंद रहना होगा। इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने देश में हिंसा की हालिया घटनाओं की पृष्ठभूमि में फलस्तीनी नेता महमूद अब्बास से बातचीत करने के लिए कहा है। नेतन्याहू का कहना है कि वे बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इससे हिंसा की घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है। इसराइल में हाल के दिनों में फलस्तीनियों के हमले बढ़े हैं, जिसमें 7 इसराइली मारे गए हैं। हिंसा में कम से कम 30 फलस्तीनी भी मारे गए हैं। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल का कहना है कि डीजल 95 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। डीजल की बढ़ी हुई कीमत बीती आधी रात से प्रभावी हो गई है, जिसके हिसाब से डीजल का नया दाम 45 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर होगा। इस बार पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 32 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। इनमें से 20 से ज़्यादा सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने नक्सल प्रभावित इलाकों में व्यापक सुरक्षा इंतजामों का दावा किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं, आज निखिल रंजन के साथ। शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से करते हैं। अमेरिका 2016 के बाद भी अफगानिस्तान में अपनी फौज बनाए रखेगा। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस बात की पुष्टि की है। पुरानी योजना के मुताबिक सिर्फ एक छोटी टुकड़ी को दूतावास में रहना था और बाकी सभी सैनिकों को अगले साल के अंत तक वापस चले जाना था। अमरीकी सेना का कहना है कि अफगान सेना को तालिबान के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए और मदद की जरूरत है। पूरे ब्यौरे के साथ वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय।
ये एक बड़ा फैसला था और शायद ही किसी को शक हो कि राष्ट्रपति ओबामा के लिए फैसला आसान नहीं था। ایک سال پہلے انہوں نے اسی وائٹ ہاؤس سے اعلان کیا تھا کہ 2016 کے آخر تک کرسی چھوڑنے سے پہلے وہ افغانستان سے امریکی سینا پوری طرح سے واپس بلا لیں گے، لیکن کئی ہفتوں اور مہینوں کے منتھن کے بعد انہوں نے برہسپتیوار کو اعلان کر دیا کہ اگلے سال کے آخر تک 9,800 امریکی فوجی افغانستان میں تعینات رہیں گے۔
We will maintain 5,500 troops at a small number of bases, including at Bagram, Jalal Abad in the east and Kandahar in the south. Again, the mission will not change. Our troops will focus on training Afghans.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2017 میں بھی 5,500 امریکی فوجی مکھ روپ سے چار ٹھکانوں، بگرام، جلال آباد، کندھار اور کابل میں تعینات ہوں گے۔ اس بیان میں ایک بار پھر سے انہوں نے دہرایا ہے کہ امریکی فوج وہاں اب کسی یدھ ابھیان میں بھاگ نہیں لے گی، ان کا مشن ہوگا القاعدہ کے خلاف کاروائی اور افغان فوج کو پرشکشن دینا۔ راشٹرپتی اوباما کا کہنا تھا کہ زمینی استھتی کے آکلن کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، کیونکہ افغان فوج ابھی بھی جتنا چاہیے اتنی طاقتور نہیں بن پائی ہے اور طالبان نے کچھ علاقوں میں بڑھت حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے راشٹرپتی اشرف غنی بھی امریکی فوج کی موجودگی چاہتے تھے اور امریکہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ افغان جنتا کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صحیح معنی میں شانتی تبھی آئے گی جب طالبان بات چیت کے لیے آگے آئیں اور ساتھ ہی ان کو اور دوسرے آتنکوادیوں کے لیے جو پناہ گاہ ہیں وہ ختم ہو۔
Next week I'll host Prime Minister Sharif of Pakistan and I will continue to urge all parties in the region to press the Taliban to return to peace talks and to do their part in pursuit of the peace that Afghans deserve.
راشٹرپتی اوباما کا کہنا تھا کہ اگلے ہفتے جب پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف واشنگٹن آئیں گے تو وہ ان سے بات کریں گے کہ طالبان پر دباؤ ڈالا جائے بات چیت میں شامل ہونے کے لیے۔ ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر جان میکین نے اوباما کے فیصلے کا سواگت کیا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا ہے کہ پوری کی پوری فوج کو ابھی افغانستان میں رہنے دینا چاہیے تھا اور 2017 میں جو بھی نیا راشٹرپتی ہوتا وہ آگے کا راستہ طے کرتا۔ واشنگٹن میں کئی وشیشجوں کا کہنا ہے کہ اوباما کو یہ فیصلہ لینے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے، کیونکہ ایک تو افغان فوج کی کمزوری سامنے آئی ہے اور دوسرا پاکستانی خفیہ ایجنسی نے افغان طالبان کا ساتھ ابھی بھی نہیں چھوڑا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سمبھو ہے کہ اوباما پرشاسن پاکستان پر نئے سرے سے دباؤ ڈالے، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ پاکستانی فوج اس معاملے پر اپنے رخ میں فی الحال کوئی تبدیلی کرے گی۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی، واشنگٹن۔
افغانستان سے امریکی فوجوں کی واپسی راشٹرپتی براک اوباما کا چناوی وعدہ بھی تھا اور جس پر بہت تیزی سے کام بھی ہوا۔ جہاں 1,00,000 سے زیادہ سینک موجود تھے وہاں اب بمشکل 9,000 سینک بچے ہیں۔ ایسے میں اس گھوشنا کے کیا معنی ہیں؟ یہی سوال میں نے پوچھا امریکہ کی ڈیلویئر یونیورسٹی کے پروفیسر مقتدر خان سے۔
جو غلطی یا جو فیلئر عراق میں ہوا ہے وہ دہرایا جا رہا ہے افغانستان میں۔ عراق کی جو آرمی انہوں نے ٹرین کی تھی جرمنی اور امریکہ وغیرہ ویسٹرن ممالکوں نے، وہ نہ تو آئیسس کے سامنے کھڑے رہ سکی نہ القاعدہ سے مقابلہ کر سکی، بالکل ٹوٹلی کولیپس ہو گیا ہے۔ اور وہ چیز نظر آ رہی ہے افغانستان میں بھی، جب خاص طور سے قندوز کے ایپیسوڈ کے بعد جب طالبان نے بیسیکلی قندوز پہ قبضہ کر لیا تھا اور پھر امریکہ کی ہی مدد سے پھر افغانستان کی فوجوں نے واپس قندوز کو حاصل کر لیا، لیکن اس میں بہت سارے نقصان ہوئے۔ طالبان نے وہاں پہ جو جیل میں ان کے کئی لیڈرز وغیرہ جو پھنسے ہوئے تھے ان سب کو رہا کر لیا۔ تو جو قندوز کے فیلئر کے بعد سے تو یہ صاف ظاہر ہوا کہ افغانستان کی جو فوج ہے وہ لڑ تو ضرور رہی ہے، مطلب عراق کی طرح نہیں ہے کہ وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی طالبان کے فورسز کے خلاف لڑنے کے ڈیسائسیولی جیتنے کی اسٹرینتھ نہیں ہے۔ تو صدر اوباما یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ان کی دوران میں، ان کی پریسیڈنسی کے دوران میں بیسیکلی افغانستان میں کولیپس ہو اور طالبان کا قبضہ ہو جائے، کیونکہ طالبان اب مسلسل اٹیک کر رہے ہیں تقریباً ہر طرح سے۔ تو صدر اوباما نے اعلان کیا کہ جب تک صدر اوباما پریسیڈنٹ ہوں گے 20 جنوری تک یہ فوجیں وہاں رہیں گی، اور پھر اگلے پریسیڈنٹ کے اوپر ہے، وہ ہو سکتا کہ پہلا کام جو نیا پریسیڈنٹ آئے گا وہ یہی کرے گا، صدر اوباما کا ڈیسیشن ریورس کر کے مزید وہاں پہ ٹروپس رکھیں۔
افغانستان کب اس قابل ہو سکے گا کہ وہ اپنی سرکشا خود کر سکے؟
افغانستان کے پاس خود ایسے نیچرل ریسورسز نہیں ہیں جو عراق کے پاس تھے، یعنی آئل ویلڈ کے بیسس پہ وہ بہت سارے مہنگے قسم کے ہتھیار خریدنے کے لائق ہو۔ وہ دنیا کا سب سے غریب ملک ہے اور جتنا بھی اس کے پاس ہتھیار وغیرہ ہیں وہ ساری ایڈ ویسٹرن ایڈ کی وجہ سے مل رہی ہے، اور جو طالبان وغیرہ گروپس ہیں نہ صرف ان کے پاس ریسورسز دوسری جگہ سے آ رہی ہیں, دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں, بلکہ وہ ڈرگ کا بھی بزنس کنٹرول کرتے ہیں اور وہاں سے بھی زیادہ تر ڈرگ کا پیسہ بھی طالبان کو زیادہ افغان کے پرو افغانستان وار لارڈ کو کم شیئر ملتا ہے. تو یہ ریسورسز تو گورنمنٹ کے پاس ہیں ہی. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو طالبان, ہم لوگ تو ان کو ٹیررسٹ وغیرہ کہہ کر یہ بھول جاتے ہیں, لیکن وہ افغانستان کی جو سب سے بڑی ایتھنک گروپ ہے جو پشتون ہے ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی جو طالبان کا جو پول ہے جس میں سے وہ اپنے فائٹرز کو ڈرا کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں بھی ہے اور افغانستان میں بھی ہے. یعنی اس کا جو ہیومن ریسورس پول ہے وہ افغانستان کی گورنمنٹ کے پاس اتنا بڑا ہیومن ریسورس پول نہیں ہے جتنا ان کے پاس ہے. پلس طالبان ایسی چیزیں یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ سوئسائڈ بامبرز اور ٹیررزم ٹیکٹکس جو افغانستان کی گورنمنٹ استعمال نہیں کر سکتی. مطلب افغانستان کی گورنمنٹ سوئسائڈ بامبر تو نہیں بھیجے گی نا طالبان کے کیمپس میں پاکستان میں, تو اس وجہ سے بھی اٹ از ہینڈی کیپ. تو اس کو اوور ویلمنگ فورس تبھی یوز کرنے کا چانس ملتا ہے جب طالبان ان کے ساتھ فوج کی طرح گراؤنڈ پر کمبیٹ کرے, اور وہ طالبان تو وہ کرتے ہی نہیں, وہ ٹیررزم اور انسرجنسی. تو یہ بیٹل خاص طور سے جب انٹرنل پاپولیشن کے خلاف لڑی جا رہی ہے بہت مشکل ہے. دیر ہیو ٹو بی اے پولیٹیکل سولوشن, ملٹری سولوشن بہت مشکل ہے.
دنیا کی بڑی خبریں بی بی سی کے ساتھ سوموار سے شکروار دیکھیے ٹی وی پر بی بی سی دنیا, ای ٹی وی نیٹورک کے ہندی اور اردو کے سبھی چینلوں پر.
نمسکار, سواگت ہے آپ سب کا, یہ ہے بی بی سی دنیا, میں ہوں سمرن پریت کور.
یہاں آ کر وہ لوگوں کو گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اب آزاد ہیں,
اس سے بات کرنے میں بہت مزہ آتا ہے.
تو دیکھنا مت بھولیے بی بی سی دنیا شام 9:20 پر, ای ٹی وی کے ساتھ ساتھ بی بی سی ہندی .com اور بی بی سی ہندی کے یوٹیوب چینل پر بھی. بی بی سی دنیا.
بی بی سی ریڈیو پر آپ سن رہے ہیں نمسکار بھارت, نکھل رنجن کے ساتھ. اور اب رخ کرتے ہیں بہار کا, جہاں آج دوسرے چرن کا متدان ہونا ہے. بہار میں چناؤ ہو رہے ہیں اور اس میں آج جو جن 6 ضلعوں کی 32 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے, گیا, اورنگ آباد, جہان آباد, کیمور, ارول اور روہتاس ضلعوں میں آج ووٹ ڈالے جائیں گے. 20 سے زیادہ سیٹیں نکسل پربھاوت کھیتروں میں ہیں اور اسے لے کر ہمارے سہیوگی واتسلیہ رائے نے پٹنہ زون کے آئی جی کندن کرشنن سے بات کی اور پوچھا کہ پولیس پرشاسن نے دوسرے چرن کے متدان کے لیے کیا خاص تیاری کی ہے.
یہ سب سے چھوٹا چرن ہے, ودھان سبھا کانسٹیٹیوئنسی وار 32 سیٹیں ہیں جس میں قریب 20 اتی سنویدنشیل ہیں ودھان سبھا چھیتر, کیونکہ وہاں نکسلیوں کا ملتا سی پی آئی ماؤسٹ سنگٹھن کا کافی پکڑ ہے. اس میں سبھی طرح کی تیاری کی گئی ہے, کافی دنوں سے تیاری چل رہی ہے. ہر راستہ جو بوتھ پر جاتی ہے اس کی نگرانی رکھنا, لینڈ مائنس نہیں لگایا جائے, پیدل پر لوگوں کو بھیجنا, جو اتی سنویدنشیل بوتھیں بہت دور دراز کی ہے اس کو شفٹ کرنا, ہیلی کاپٹر انڈین ایئر فورس کی 2 ہے اس سے, اور سی آر پی ایف کی ہیلی کاپٹر, اس سے بھی نگرانی رکھی جا رہی ہے. پڑوسی راج جو جھارکھنڈ ہے جس سے سٹا ہوا ہے یہ پوری چھیتر, ان کے پولیس پدادھیکاریوں سے 2 بار میٹنگ ہو چکی ہے کہ وہ کس طرح سے ہم لوگ کو سہیوگ دے سکتے ہیں تاکہ بالکل شانتی پوروک یہ چناؤ ہو سکے.
کندن کرشنن جی, میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں, تیاری تو آپ نے پوری کر لی ہے لیکن پولیس اس دوسرے چرن کو, کیونکہ نکسل پربھاوت چھیتر ہے یہ, کتنی بڑی چنوتی کے طور پر لے رہے ہیں؟
سب سے چنوتی پورن چرن یہی ہے, یہ ہم لوگ سب مان رہے ہیں, گرہ وبھاگ, ہمارا چناؤ آیوگ. اس لیے اس پر جو بھی چناؤ آیوگ سے مانگ کی گئی تھی مدد, وہ سب سادھن ملی.
متداتا ڈرے نہیں اور پولنگ اسٹیشن تک پہنچے, اس کے لیے بھی پولیس نے کوئی تیاری کی ہے؟
بالکل, جتنے کمزور ورگ کے لوگ ہیں, جو اتی سنویدنشیل چھیتر ہے, وہاں مضبوط پٹرولنگ پارٹی دی گئی ہے تاکہ ان کو سرکشت بوتھ پر لایا جا سکے اور ووٹ گروایا جا سکے. پورو میں چناؤ بوائیکاٹ کافی اثردار ہوتا تھا, دھیرے دھیرے یہ سی پی آئی ماؤسٹ سنگٹھن جو کہ بینڈ ہے بھارت سرکار کے دوارا, اس کی پکڑ گھٹ رہی ہے, اس لیے وہ بوکھلائے رہتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو ڈر رہتی ہے وہ آئی ڈی لینڈ مائن بلاسٹ کی. آمنا سامنے کی لڑائی کم ہی کی سمبھاونا ہوتی ہے, آئی ڈی بلاسٹ کی سمبھاونا ہوتی ہے. اس کے لیے کافی ہم لوگ کاروائی کرتے رہتے ہیں, ابھی بھی کاروائی چل رہا ہے. جو بھی روڈ سے ہمارے پولنگ پارٹی کے لوگ گئے ہیں اس پر لگاتار نگرانی رکھی ہے.
کن ضلعوں پر آپ کی زیادہ نظر ہے؟
اس میں جو ضلع ہیں اتی سنویدنشیل وہ گیا کا, दक्षिणी भाग जीटी रोड से सटा हुआ जो भाग है, औरंगाबाद का दक्षिणी भाग जीटी रोड और पलामू का सीमा जो लगता है, रोहतास का और कैमूर का जो रोहतास कैमूर प्लेटो पहाड़ी क्षेत्र है, ये अति संवेदनशील है।
पटना जोन के आईजी कुंदन कृष्ण बता रहे थे कि सुरक्षा के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं, और उनका कहना था कि वो लगातार इलाकों पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन हमारे संवाददाता सलमान रावी इस वक्त इमामगंज में ही हैं, और सुबह जब वो वहाँ पहुँचे तो उस वक्त उनकी एक मुलाकात एक ऐसे पिता से हुई जिनके बेटे को पोलिंग अफसर बना करके भेजा गया है और पुलिस उन्हें छोड़कर भाग गई है। कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही, आइए सुनते हैं उनकी ये बातचीत।
जी आपके बेटे का नाम क्या?
अखिलेश कुमार भारद्वाज।
जी कहाँ पोस्टिंग हुई है?
पोस्टिंग हुई है आपको अत्री में है, एक जगह है बथानी
जी,
और बहुत निर्जन स्थान है जहाँ आबादी बहुत कम है। फोर्स वहाँ जब हम उसने पूछा कि तुम कैसी जगह पर गए हो, तो उन्होंने बताया हमारे लड़के अखिलेश ने कि पिताजी हम क्या बतावें, फोर्स भी जो है सो हम लोगों को उतार करके और लौट गई है और हम लोग एकदम बिल्कुल अनाथ जैसा हैं और भयभीत हैं। जिस जगह पर हम लोग जहाँ बूथ बनाया गया है वहाँ बहुत भयभीत हैं।
जंगल का इलाका है?
जंगल का इलाका है।
यहाँ तो गोली भी चल गई है रात में?
हाँ सुना, आवाज़ तो आई है जी।
तो आपने ये बातचीत सुनी जिसमें एक शख्स कह रहे थे कि वहाँ पर सुरक्षा के हालात की क्या स्थिति है। सलमान रावी बीबीसी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं और वो वहीं इमामगंज में हैं जहाँ ये बातचीत रिकॉर्ड की गई थी। सलमान स्वागत है आपका बीबीसी के कार्यक्रम में। ये बताइए कि वहाँ पहुँचने के बाद जो आपने ये आवाज़ हम तक भेजी थी उसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि सुरक्षा के हालात को लेकर के लोगों के मन में थोड़ी चिंता है, कृपया खुल करके बताइए कि क्या बातें हुई। और
देखिए वैसे तो ये घटना रात में हुई है जिसका उन्होंने जिक्र किया है, गोली चलने की जो बात आ रही है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर गोली चली, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि सुरक्षा कर्मियों ने ले जाकर जो पोलिंग एजेंट्स हैं और ये सॉरी पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाया और फिर छोड़कर वापस चले आए और वहां से फिर वो फोन आया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं चूंकि 23 क्षेत्र जो है 32 सीटों के 23 जो सीटें हैं वो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं और इसीलिए दूसरे चरण का जो ये मतदान है वो काफी महत्वपूर्ण है। चूंकि यहाँ जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त यही वो जगह है जहाँ पर गोली चली थी रात में, और अभी सड़क के ऊपर गश्त हो रही है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, बॉर्डर लगा हुआ है बिल्कुल चतरा का, झारखंड का जो चतरा है जिला उससे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर बॉर्डर है, और काफी अभी रात के बाद से काफी और अर्धसैनिक बलों को भेजा गया है इस इलाके में। अंदर के इलाके में चूंकि बहिष्कार का आह्वान किया हुआ है नक्सली संगठन ने, तो इसलिए अंदरूनी इलाकों में भी उतनी फोर्स की डिप्लॉयमेंट नहीं हुई, लेकिन जो शहरी इलाके हैं जो सड़क के इलाके हैं वहां पर चप्पे चप्पे पर फोर्स को बैठाया गया है। अभी आते आते मैंने ये देखा वहां पर।
बीबीसी संवाददाता सलमान रावी, हम आपसे बातचीत ये लगातार बनाए रखेंगे। इसके पहले एक और बातचीत हम सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को। आज के चुनाव में कुल 456 उम्मीदवार हैं, 32 महिला उम्मीदवार हैं। प्रमुख उम्मीदवार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो इमामगंज और मखदुमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी नेता प्रेम कुमार गया से मैदान में हैं। दूसरे दौर की वोटिंग के पहले हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन से बात की और पूछा कि दूसरे चरण में 32 सीटों पर होने वाला चुनाव कितना अहम है।
इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि ये दूसरा चरण है, पहला चरण में जो पार्टियां हैं उनको अपना अपना फीडबैक मिला हुआ है और बाजार में भी इसको लेकर अलग अलग मत हैं। पांच चरण में ये बीच का चरण है, इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, और ये जो मध्य बिहार का वो पॉलिटिकली काफी हिली कंटेस्टेड होगा। वो
दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें से एक बड़ा इलाका नक्सल प्रभावित है, ऐसे में आप चुनाव पर इसका क्या असर देखते हैं?
वो ज्यादातर अब वो एक प्रशासनिक और चुनाव के मैनेजमेंट का मामला है। नक्सल अब उस ढंग से बिहार में राजनीतिक ताकत नहीं रह गए हैं, और पहले 90s वगैरह में उन इलेक्शंस में भी वो दखल देते थे और उनका एक रोल हुआ करता था, और नक्सल जो है घोषित रूप से वो बायकॉट करते रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको वो सपोर्ट भी करते रहे हैं, और ज्यादातर का ट्रेंड यही रहा है कि जो यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टियां रही हैं उनको सपोर्ट करते रहे, लेकिन अब उनका राजनीतिक प्रभाव जो है बहुत कमजोर हो गया है, राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई वो विषय नहीं हो।
कई अहम चेहरे भी हैं जिनमें एक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं जिनका मुख्य मुकाबला विधानसभा के स्पीकर नारायण चौधरी के साथ, इस प्रतिद्वंदिता को आप किस तरह से देख रहे हैं?
बिहार के दो बड़े दलित लीडर और एक क्षेत्र से मगध क्षेत्र के दो बड़े दलित लीडर के बीच का एक मुकाबला है इस लिहाज से, और दो अलग अलग खेमों के चेहरे हैं। दोनों बड़े वेटरन पॉलिटिशियन हैं, 90s से वो जीतते रहे हैं। उदयनारायण चौधरी स्पीकर रहे, आरजेडी के एक दौर में अध्यक्ष रहे, और जीतन राम मांझी तो और भी वेटरन है, मतलब वो 70s से पॉलिटिशियन है। दोनों मगध और गया जिला को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, इस लिहाज से वो बहुत महत्वपूर्ण है उनके बीच का जो चुनावी स्पर्धा है।
भारतीय जनता पार्टी ने भी एक ऐसा ही चेहरा सामने किया है, प्रेम कुमार जी का, जो लंबे टाइम से विधायक चुने जाते रहे हैं, लेकिन इस चरण के पहले उनको एक मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार के तौर पर भी पेश किया गया। इस रणनीति को आप किस तरह से देखते हैं, वो भी इसी चरण में चुनाव लड़ रहे हैं?
हाफ ए डजन चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं, अति पिछड़े चेहरे भी हैं, पिछड़े चेहरे भी हैं, और वो सामान्य जाति के भी चेहरे हैं। प्रेम कुमार जी का जो है, जो बहुत सीनियर लीडर हैं, और उन्होंने अपनी इस दावेदारी को जाहिर भी किया है, मोदी की रैली में भी ये बात के समर्थक कहीं ना कहीं प्रकट कर रहे थे, तो ये जो पिछले जो बयान आए हैं उससे प्रेम कुमार जी की जो दावेदारी है उसको थोड़ा बल मिलता है, और ये बीजेपी की रणनीति का एक ये हिस्सा है।
दूसरे चरण के चुनाव में आप किस गठबंधन को आगे देखते हैं, या किस तरह की टक्कर दोनों के बीच में इस दूसरे चरण में आप देखते हैं?
दो लिहाज से आप ये कर सकते हैं कि क्योंकि ये जो मगध और शाहबाद का जो क्षेत्र है वो जातीय और वर्ग संघर्ष के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ जो सामाजिक और जो वर्गीय तनाव है ये मगध क्षेत्र को और शाहबाद क्षेत्र को थोड़ा विशिष्ट बनाता है। महागठबंधन का जो सामाजिक आधार है के लिहाज से और पहले जो प्रदर्शन होते रहे उस लिहाज से ये क्षेत्र जो है, खासकर जो मगध का क्षेत्र है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वो मेरे ख्याल से उनको लीड लेनी चाहिए महागठबंधन को, और बीजेपी को काफी चुनौती देने की कोशिश करेगी।
राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन बता रहे थे कि किस तरह का मुकाबला वहां पर चल रहा है, और बीबीसी संवाददाता सलमान रावी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइए, वहां राजनीतिक परिदृश्य काफी कुछ तो हम लोगों ने इस विश्लेषण में सुना, आपने क्या देखा है?
जी बिल्कुल, जो समझ में आ रहा है वो बिल्कुल कांटे की टक्कर है, क्योंकि अब एक तो जीतन राम मांझी के पॉलिटिकल करियर का सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जनता दल यूनाइटेड से टूट कर अलग हुए हैं, फिर उन्होंने अपनी एक जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, और फिर वो ये वोट, ये चुनाव ये एस्टैब्लिश उनको करेगा कि जिस वर्ग का वो रिप्रेजेंटेशन करते आए हैं और ये दावा करते हैं कि ये उनके सर्वमान्य नेता हैं, तो क्या वो वर्ग उनके साथ है या नहीं, वो फैसला होगा इस चुनाव में। क्योंकि खासतौर पर ये जो एरिया है इमामगंज का, जहाँ से उन्होंने सोचा चुनाव लड़ने की, ये दूसरी सीट है जहाँ से वो लड़ रहे हैं, एक मखदूमपुर की सीट है जहाँ से उन्होंने जहाँ से वो खड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी जो बिल्कुल बैकवर्ड जो लोग हैं, बिल्कुल दलित हैं, उनके बीच में उनको लगता है कि वो एक नए हीरो के रूप में उनको देखा, जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है पिछले दिनों। तो ये इस जो है एम्बिशन के साथ जीतन राम मांझी सिलेक्शन में है। अब ये तो अब इनका करियर भी इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि टक्कर भी काफी कड़ी है उदय नारायण चौधरी से, उनको यहाँ पर मिल रही है सीट पर।
जी सलमान, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अब संदीप सोनी के साथ डाल लेते हैं आज के अखबारों पर नज़र।
निखिल, पहला अखबार मेरे हाथ में द हिंदू है। अखबार के पहले पन्ने पर खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में बंद पड़े डांस बार दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस पाबंदी को जारी रखना चाहती है। अखबार में ये खबर भी है कि पाकिस्तान में वर्षों से रह रही भारतीय लड़की गीता के परिवार का पता चल गया है, और गीता जल्द ही भारत लौटेंगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस संबंध में ट्वीट किया था। अगला अखबार देखें, इंडियन एक्सप्रेस। तो अखबार की पहली खबर कहती है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि मुसलमान इस देश में रह सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए गोमांस खाना बंद करना होगा। इंडियन एक्सप्रेस में ही यह खबर भी है कि 2G केस में CBI को फटकार पड़ी है, जिसके बाद कपिल सिब्बल और अरुण जेटली के बीच शब्दों के बाण चले हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर अपनी एक्सक्लूसिव खबर बताते हुए छापा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विशेष दूत सतिंदर लामा के हवाले से खबर है कि साल 2007 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ कश्मीर मुद्दे पर जनमत संग्रह की मांग छोड़ने और मौजूदा सीमाओं को मानने पर सहमत हो गए थे। हिंदुस्तान में ही खबर है कि काले धन के खेल में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स समेत 8 बैंकों के नाम सामने आए हैं। दैनिक भास्कर देखें, खबर है कि एक दिन में अधिकतम 3 बार फोन कटने पर हर्जाना वसूलने को मंजूरी मिल गई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने कहा है कि वो इस संबंध में आज अधिसूचना जारी करेगा। अमर उजाला की खबर कहती है कि प्रोविडेंट फंड और पेंशन योजना के लिए अब आधार कार्ड स्वीकार किया जाएगा। वहीं जनसत्ता में छपा है कि आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जहीर खान ने क्रिकेट को अलविदा कहा, यह खबर तमाम अखबारों में है।
बहुत शुक्रिया संदीप सोनी अखबारों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए। और अब नजर डालते हैं उस खबर पर जिसका इंतजार आप लोग कुछ देर से कर रहे थे। ऐसे तमाम लोग हैं जो घर से दूर होने पर जब तब घर के बने खाने की कमी महसूस करते हैं। फूड इंडस्ट्री ने लोगों की इसी चाहत को कमाई का साधन बना लिया है। सोशल मील का विचार लेकर ऐसे होस्ट सामने आए हैं जो घर से दूर रहने वाले लोगों की मेज़बानी करते हैं और उन्हें घर का बना बनाया खाना खिलाते हैं। जाहिर है कि मेहमानों को इसके लिए पैसा भी देना पड़ता है। क्या है खाने और पिलाने का ये नया चलन, बता रहे हैं अमित भास्कर अपनी इस खास रिपोर्ट में।
जो लोग घर से दूर होते हैं वो सेहतमंद खाने के लिए अच्छे रेस्तरां जाते हैं, अधिक से अधिक रुपए खर्च करने को तैयार होते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद घर के खाने की खुशबू और स्वाद का मिल पाना लगभग असंभव सा होता है। लेकिन आजकल सोशल मील या सोशल डाइनिंग कंसेप्ट ने कुछ वेबसाइट्स के जरिए इस एक कमी को पूरा करना शुरू कर दिया है। एक ऐसी ही वेबसाइट है mealtango.com जिसके CEO हैं साकेत।
जब मैं लंदन में था मैंने एक साइट का नाम सुना जो कहते हैं काउच सर्फिंग, जिसके थ्रू जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं वो आपके घर पे आकर रह सकते हैं आपके साथ। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो सिर्फ आकर रहते हैं, वो खाने का एंगल नहीं होता है। तो हम सबको लगा कि ये चीज है जो बड़ी आसानी से मिलती नहीं है जब आप ट्रैवल कर रहे हो। जिसके पास फूड का पैशन हो, बेसिकली हम उन लोगों को लेते हैं जो होस्ट होते हैं। सबसे पहले हम उनका एक फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं जहाँ हमारे टीम से लोग जाकर उनसे मिलते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि यस इनको हम एक होस्ट बना सकते हैं वेबसाइट पर। आई बिलीव दैट एज अ मार्केट अपॉर्चुनिटी द फूड इंडस्ट्री इतना बड़ा बिजनेस है, डेफिनेटली अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस ये लोग इंटरेस्ट रखेंगे ऐसे प्रोडक्ट के लिए।
बस एक वेबसाइट पर अपने पसंद के खाने के हिसाब से एक मेजबान चुनिए, तारीख और समय तय करिए, पैसे चुकाइए और मेहमान बनकर उनके घर के बने खाने का लुफ्त उठाइए। क्या ये सच में इतना आसान है?
नहीं, इतना आसान नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने जब किसी को इनवाइट किया था तो मैं बहुत नर्वस थी, ऐसे हेजिटेंट तो बहुत थी मैं कि क्या बात कर रहे हैं, अनजान है। देन फिर जब एक दो बार बात करी और तो पता चला तो थोड़ा भरोसा हुआ।
नीलकमल मुंबई में एक गृहिणी हैं और सोशल मील की मेजबानी करती हैं। अंजू जो कि पुणे में एक शेफ हैं, ना सिर्फ मेजबानी करती हैं बल्कि बना बनाया खाना पैक करके लोगों के घर तक भी पहुंचाती हैं।
इतना तो प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज वी आर टोटली सेट बैक कि कौन आने वाले हैं और किस टाइप के लोग आने वाले हैं, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है बिकॉज वी नो हूज कमिंग। जो मेरा एम है कि टू कुक द फूड नाइसली फॉर देम, अगर वो इंडियन क्विजीन है या इंटरनेशनल क्विजीन है।
विदेशों से शुरू हुआ ये नया कंसेप्ट भारत के शहरों में खासा प्रचलित होने लगा है। शहरों में अपने परिवार से दूर रह के नौकरी या पढ़ाई करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता बहुत तेजी से बढ़ी है। ऐसे में लोग घर के खाने को ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं। लेकिन कितना मुश्किल है एक अनजान व्यक्ति का मेहमान बनना या एक अनजान मेहमान का मेजबान बनना। गौतम बैनर्जी अक्सर वेबसाइट से मेजबान ढूंढकर सोशल मील का आनंद उठाते हैं।
हमें फूडी कहा जाता है, हम खाने के लिए कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। किसी को अगर ना भी जाने हम वहाँ पे खाने के विषय पे बातचीत करके हम एक दूसरे को जान लेते हैं और बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है। ऐसा कोई ये नहीं होता कि हम किसी के घर आए हैं, कैसे बैठना है, क्या करना है। फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि हम मेन्यू पहले से ही पूछ लेते हैं कि क्या है।
सोशल मील या सोशल डाइनिंग न सिर्फ नए नए पकवानों को जानने और चखने का जरिया है बल्कि अलग अलग राज्य और देशों से आए हुए नए नए लोगों से मिलने जुलने और अलग अलग रहन सहन तथा संस्कृति को समझने का भी एक अनोखा जरिया है।
अमित भास्कर की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 32 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। डीजल की बढ़ी हुई कीमत बीती आधी रात से प्रभावी हो गई है, जिसके हिसाब से डीजल का नया दाम 45.90 रुपये प्रति लीटर होगा। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस बात की पुष्टि की है कि अमरीका साल 2016 के बाद भी अफगानिस्तान में अपनी फौज रखेगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में हुई बैठक में यूरोपीय संघ के नेता तुर्की के साथ शुरुआती समझौते पर सहमत हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक पैरोल बोर्ड ने कहा है कि ओलंपिक और पैरालंपिक धावक ऑस्कर पिस्टोरियस को अगले मंगलवार जेल से रिहा कर दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें घर में नजरबंद रखा जाएगा। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी ठीक एक घंटे बाद विश्व भारती में। आज स्टूडियो संभाला देवाशीष कुमार ने, संदीप सोनी के साथ निखिल रंजन को दीजिए अनुमति और देखते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।